everyone. I am Shivani Singhi, digital creator, podcaster, founder of Mapreneur and your host. क्या आप भी कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, फिर चाहे प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, पेरेंटिंग से, रिलेशनशिप से, हेल्थ से, तो आप यहाँ सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं वो हमारे साथ बात करते हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ बात करते हैं, और जो भी वुमेन्स के प्रॉब्लम्स, मदर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करते हैं. मैं एज अ कॉमन पर्सन बहुत सारे जो मेरे मन में भी सवाल आते हैं वो सवाल मैं पूछती हूँ, और उन सवालों के जवाब डॉक्टर्स एंड ट्रेनर्स हमारे साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. वर्किंग वुमेन्स है और जो मदर हैं जिन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो भी हमारे साथ कुछ अपनी स्टोरी शेयर करती हैं. मींस पूरा पॉडकास्ट ऑल अबाउट वुमेन, वुमेन्स की लाइफ से रिलेटेड है. वेट लॉस, हेल्थ, पेरेंटिंग, जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो वुमेन से रिलेटेड कवर करते हैं. जो भी चीजें आप ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब आज हम बात करने वाले हैं कि चाइल्ड की अपब्रिंगिंग किस तरह से की जानी चाहिए, या कैसे आप अपने बच्चे को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, और कैसे आप उनकी जो हैबिट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राशि जैन, जो एक एमडी है, एनएलपी एंड ईएफटी कोच है, रेकी मास्टर एंड यूट्यूबर है. इन्हें 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर्स ऑफ कोचिंग एनएलपी, 3 साल से ये कोच कर रही हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं एनएलपी के थ्रू, एंड इनकी स्पेशलिटी बैच फ्लावर एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है. सो वेलकम है आपका डॉक्टर राशि जैन. प्लीज आपके बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं.
शिवानी जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आपकी चीजों को मैं सुनती हूँ. मैं गाना में आपको ऑलरेडी फॉलो करती हूँ मैप्रेन्योर में, और इंस्टाग्राम में भी मैं आपको फॉलो करती हूँ, और बहुत सारी चीजें अच्छी होती है. आप जो काम कर रहे हैं वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि आज लोगों को इसकी जरूरत है. और जिस तरीके से आप कर रहे हैं, हर रोज इतना मेहनत, इतना एफर्ट लगा रहे हैं लोगों के लिए, तारीफ के बिल्कुल काबिल है. बिल्कुल, आप कहते ना जिसे, बहुत नेक काम कर रहे हैं. जहाँ तक शिवानी जी मेरी बात है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दूंगी कि आई एम समवन जो इंटरेस्टेड है लोगों की लाइफ में सुधार लाने की दिशा में, सुधार लाने की भी दिशा में. इन द सेंस मैं ऐसा बोलूंगी कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है लोगों की लाइफ में सेहत को अच्छा करना, लोगों की लाइफ का जो सेहत बिगड़ा हुआ है उसको सही करने में
अभी ज्यादातर यही चीजों की जरूरत है.
और जहां तक हेल्थ की बात है ना शिवानी जी, मैं सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ शरीर की, मन की, आत्मा की
जी,
और साथ ही साथ आपके रिश्तों की, आपके अध्यात्म की
जी.
क्योंकि मैं एनएलपीएन भी हूँ, एनएलपी भी मैंने सीखी है, मतलब माइंड का साइंस भी सीखा है मैंने, ईएफटी सीखी है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, मैंने रेकी सीखी है, तो मैं आपके सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ. प्लस मैंने एमडी किया है, तो मैं आपको फिजिकल लेवल पे भी हेल्प कर सकती हूँ. सो इस तरीके से मैं आज आपको ओवरऑल हेल्प और तीनों एस्पेक्ट में देने की कोशिश करूंगी, ताकि ओवरऑल आप बिल्कुल एकदम जो टॉप पे हम चाहते हैं ना कि सॉल्यूशन एकदम हो, तो एकदम परमानेंट हो.
आज आप बताए हमें कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसका आप इंट्रो दे दीजिए.
शिवानी जी, जैसे हमने इस विषय में डिस्कस किया था कि हम किस विषय से चालू करें, तो हम चालू करेंगे एंगर से, और क्योंकि ये आज की एकदम नीड हो गई है. जिस बच्चे को देखो वो हाथ में ही नहीं रहता, सब माँ बाप छोटे से परेशान है. पहले शायद बच्चे जब बड़े हो जाते थे तब ये इशू आता था कि मेरा बच्चा हाथ से निकल गया. आज तो पेरेंट्स 8-10 साल का बच्चा होता है और ये चीज लेके मेरे पास आते हैं कि आप दीदी, आप तो आप ही संभालो, मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, 2 घंटा आप इससे जो बात करनी है, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ. सो पेरेंट्स कई बार लिटरली ऐसा करते हैं, ये रखिए मेरे बच्चे को, इसको 2 घंटे के बाद आप ट्रांसफॉर्म करके दीजिए.
आज हमारी चाइल्ड अपब्रिंगिंग को लेकर बात होने वाली है, राइट?
हाँ जी जी जी, बिल्कुल उसे इस विषय में हम बात करेंगे. जी
जी, तो आज हमारा इसके ऊपर पूरा डिस्कशन होने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग और डीप डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत सारी आजकल मदर्स हैं और ये चीजें फेस कर रही हैं. उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा, हम हर चीज उनके लिए बेटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि बच्चा जिद्दी हो जाता है, इतना गुस्सा होता है, तो ये किस रीजन से होता है, ये सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे.
देखिए, जिद्दी बच्चे का एक सॉल्यूशन और बताती हूँ मैं आपको, बहुत छोटा सा उपाय है, आप करके देखिएगा. क्या होता है ना, कई बार बच्चे सिग्निफिकेंस पाने के लिए भी जिद करते हैं, दूसरे बच्चे को मारते, टेंट्रम दिखाते हैं, तो कई बार उनको ध्यान नहीं देना, हर बार ऐसा नहीं कीजिएगा, लेकिन कभी कभी आप उनको इग्नोर कर देंगे ना, तो भी वो ये आदत छोड़ देंगे। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, तो हमेशा उसको इग्नोर नहीं करें, पहले तो उससे बात करें, उसके साथ प्यार दिखाएं, उससे बहुत अच्छे से पूछें कि क्या कारण है, क्या चीजें, सब कुछ सही करने की कोशिश करें। ना हो तो कई बार आप ये कर सकते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दे। वो उसको एक बात समझा दीजिए कि अगर तू जिद्दी करेगा तब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तू जिद्द नहीं करेगा तो शायद मैं वो चीज तुझे लाके दे दूं, चाहे छोटा बच्चा हो तू भी, है ना। सो उसकी जिद करने की आदत छूट सकती है, क्योंकि कई बार वो सिर्फ सिग्निफिकेंस पाने के लिए ये सब कर रहा होता है। बाकी आप उसको प्यार दे, केयर दे, कई बार उसको दिन में हग करे, अपने हार्ट पे से लगा के देखिए, आपके हार्ट बीट उस बच्चे को सुनाई देनी चाहिए, कई बार इससे भी उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। अगर लड़का है तो स्पेशली अगर उसके फादर ऐसा करे, मदर भी करे तो बहुत अच्छी बात है, गर्ल चाइल्ड है वो भी ये सेम चीज चाहती है, इससे भी उसमें चेंजेस आए।
हर कोई है जो अपने बच्चों की गलती को सुधारना चाहता है, और खासकर वो जो नए पेरेंट्स बने हैं। बच्चा अगर मस्ती करता है तो उसे डांटते हैं, कुछ फैलाता है या कोई गलत वर्ड बोलता है तो उसे डांटते हैं या गुस्सा करते हैं। लेकिन एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आप उस टाइम बच्चे के साथ सही बिहेव कर रहे हैं? आप जैसा बोलेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा।
तो जी शिवानी जी, देखिए आपने जैसे बोला ना कि जो आप बोलेंगे वैसा बच्चा करेगा
जी।
लेकिन मैं एक यहाँ पे छोटा सा कैच है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी
जी, जी,
और भगवत गीता में भी इस विषय में बात आती है। जैसे आप बोल रहे हैं जो बच्चे को हम बोलेंगे वो करेगा
जी,
असल में ऐसा है नहीं, असल में आप जैसा करेंगे वैसा बच्चा बिहेव करेगा।
यस यस मेरा इसके बाद यही टॉपिक आने वाला था, मैं यही बोलने वाली थी कि हर चीज आप पेरेंट्स को देखकर ही सीखता है बच्चा।
जी
जी बोलिए।
भगवत गीता में भी ये लिखा है कि लीडर जैसा कहेगा वैसा फॉलोवर बिल्कुल नहीं करेगा
जी,
बल्कि जैसा लीडर होएगा, जैसा लीडर करेगा वैसा फॉलोवर जरूर करेगा। सो बच्चे तो बिल्कुल एक मंकी के जैसे होते हैं, बंदर के जैसे होते हैं, जो आप उनके सामने करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही इमिटेट करते हैं।
जी जी जी
सही। जैसे एक केस मैं आपको बोलती हूँ, अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक बच्ची का केस आया था, वो 3 साल की है और बाद में उसको मैंने फ्लावर रेमेडी से क्योर किया। तो वो 3 साल की जो बच्ची है वो ऐसा करती थी, आप और मैं सोच के दंग रह जाएंगे, वो उसकी कोई बात अगर पूरी नहीं होती थी तो वो जाके सीधा दीवार में सिर मारती थी और रोना गाना शुरू कर देती थी, और तभी मानती थी जब उसे वो चीज मिल जाती थी। सो उसकी मॉम ने मुझे कंसल्ट किया, फिर मैंने उनसे एक बात पूछी जो इस पॉइंट से बिल्कुल मैच खाती। जैसे उन्होंने ये बोला, मैं उसको बोलती हूँ तू बेटा शांत रह कर, शांत रहना सीख, इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है, सेहत खराब होती है, सब कुछ ऐसा हो रहा है तेरे साथ, तो ऐसा मत कर। तो मैंने पूछा ओके ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, आप और आपके हस्बैंड लड़ते हैं तो उस समय बच्चा आपके सामने होता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। तो मैंने फिर पूछा कि अच्छा आप में से कोई ऐसा है क्या जो ऐसा करता है, ऐसा बिहेवियर उस बच्चे के सामने करके दिखाता है, मींस फाइट के दौरान ऐसा होता है? तो उन्होंने बोला हाँ इसके पापा ऐसे ही हैं। तो मैंने बोला फिर तो ये बच्ची ऐसी सीखेगी ही ना
जी।
फिर आप उसको कितना भी कहें, आपको जो बच्चे से करवाना है वो आपको सबसे पहले खुद करना पड़ेगा
जी। जी
हम NLP में भी इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे ट्रेंड होता है, जब हम 0 से 5 साल के होते हैं, या मतलब जब गर्भ से लेके 5 साल का समय अगर हम देखें तो उस समय हमारा अनकॉन्शियस माइंड बिल्कुल खाली स्लेट के जैसा होता है। पास्ट की पिछले जन्म के जो कर्म है, जो रिकॉर्डिंग है, उसको अगर हम छोड़ दें तो लेकिन उस 5 साल में बच्चा कैसे सीखा जो वो आसपास में देख रहा है? अब उसको सही गलत की समझ नहीं है क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड बना नहीं है, तो वो तो जो देखेगा वो वही सीखेगा। और उसमें से भी हम सिग्निफिकेंस लोगों को देते हैं, जब सामने वाला गुस्सा करे तब भी हम उसको ध्यान देंगे, तभी हम उसके सबसे ज्यादा अटेंशन देंगे, तो बच्चा सोचता है अच्छा ऐसा करने से मुझे भी अटेंशन मिलेगी, सो वो ये बिहेवियर करता है, लर्न कर लेता है
जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चों की जब अपब्रिंगिंग होती है तो उस टाइम पे जो वर्ड्स हैं वो क्या मायने रखते हैं, मीन्स हमें किस टाइप के वर्ड्स यूज करने चाहिए और उनके लिए क्या ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए हमें उनके लिए बोलने चाहिए? अगर हमने कुछ गलत वर्ड भी बोल दिया है तो उस टाइम पे हम उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं?
बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये ना सबके के साथ होता है कि मैं क्या बोलूं। अभी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें जब से सुनी है तब से सभी पेरेंट्स इस विषय में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए हैं, वो जानना चाहते हैं कि कैसे शब्द बोलना चाहिए, मेरे बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसे सही करूं, उसके माइंड को सही से ट्रेंड कैसे करूं जिससे उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। सो यहाँ पे मैं आपको एक कम्युनिकेशन मॉडल बताती हूँ। मेहबियन और फेरी की जो रिपोर्ट है कम्युनिकेशन की, वो ये कहती है कि ऑफकोर्स वर्ड्स का बहुत रोल है। वर्ड्स जो है वो आपकी जिंदगी बना सकते हैं, आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं। लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल और भी है, उसके विषय में मैं बताती हूँ। मेहबियन एंड फेरी की कम्युनिकेशन रिपोर्ट ये कहती है शिवानी जी कि हम जब बात करते हैं या जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, ये शब्द सही होगा, तो उसमें आपको जान के हैरानी होगी, सिर्फ 7% रोल हमारे वर्ड्स का होता है, 35% आपके टोन ऑफ वॉइस का, और 55% जो रोल होता है वो होता है आपके बॉडी लैंग्वेज का। सो आप शब्द तो अच्छे यूज कीजिए, साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी रखिए, टोन ऑफ वॉइस भी अच्छा रखिए। जैसे शिवानी जी हम आप कैसे करते हैं, आप इस बात से रिलेट करेंगी और आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है कि जैसे मम्मियों को भी जब किटी पार्टी में जाना होता है या फिर पिक्चर देखने जानी होती है, तब उन्हें बहुत ज्यादा रस आता है, बहुत एक्साइटेड होती हैं वो। और अगर मैं पेरेंट्स को बोल दूं या माँ को या मम्मी को बोल दूं कि आज आपको ये बुक पढ़नी है या आज आपको ये नई चीज सीखनी है, सो उनकी फिजियोलॉजी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। जो उनके चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, जब किटी पार्टी उनको जाना होता है या जब हमें सिनेमा जाना होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब बताइए, ये सेम चीज तो बच्चा देख रहा है ना, तो वो भी ये सीखता है, वो पढ़ाई के साथ पेन जोड़ता है और पिक्चर के साथ एंजॉयमेंट जोड़ता है
जी।
और आप और मैं जानते हैं कि माइंड हमेशा पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर की ओर भागता है
जी,
है ना। सो अगर हम पेन को एसोसिएट कर रहे हैं चीजों के साथ, जैसे अच्छे टेस्टी फूड को देख, जैसे हमको खुद को ऐसा है कि पिज्जा बर्गर देख के हमको वाओ आज तो पार्टी है, हम ये बोल रहे हैं, और लौकी की सब्जी को देख के बोल रहे हैं अरे यार लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी। सो थिंक अबाउट इट, फिर आप वर्ड का यूज बाद में बच्चे के लिए अच्छा करें कि नहीं बेटा लौकी की सब्जी अच्छी होती है, लौकी की सब्जी बहुत पौष्टिक होती है, लेकिन आपने पहले उसको फिजियोलॉजी से ये कम्युनिकेट कर दिया लौकी की सब्जी है। अब वो बच्चा सीखेगा क्या, ऐसा करना जितनी जरूरत थी उससे कई ज्यादा फिट कर दिया। सो ये नुकसान है। अगर अभी भी ओमिक्रॉन भी आने वाला है शिवानी जी, तो हमको बच्चों को सिर्फ इतना बताना है कि एक वायरस है जो ऐसा कर सकता है, इसलिए हमको ये प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लेकिन तू तो स्ट्रांग बॉय है मेरा, तू तो, तेरी इम्यूनिटी तो अच्छी है, हम ये सब कर रहे हैं, तो तू बिंदास रहे और बस इतना प्रिकॉशन कर। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं शिवानी जी इन चीजों को।
ये चीज आपने बहुत अच्छी कही है, पॉजिटिव चीजें आप बार बार आपके माइंड को बताते हैं, उससे आपका माइंड जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो अलग से ही वर्क करने लग जाता है, आपको खुद को पता नहीं चलता कि आप में इतनी अच्छी एबिलिटीज है और आपको पता ही नहीं।
जी बिल्कुल।
एक चीज मैं और इसमें पूछना चाहती हूँ कि हमने बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग की है बच्चों की, जिस तरह से आपने बताया है, हमने सारे वर्ड्स अच्छे बोले हैं, हमने उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए हैं, उनको अप्रिशिएट किया है हर चीज। जब हम अभी 5 ईयर तक के ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें स्कूल और फ्रेंड का क्या रोल होता है?
जैसे मान लो मैंने बच्चे को बोला कि बेटा तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये गलत शब्द निकल गया, तब आप इसके आगे ये जोड़ दो, लेकिन अगर तू पढ़ लेता है तो तू जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा कर लेगा और मैं ये चाहती हूँ, मेरी ब्लेसिंग है तेरे लिए। सो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
ओके।
और अब जब आप मुझसे पूछ रहे थे एसोसिएशन और स्कूल का रोल, टीचर्स का रोल, और 0 से 5 साल के बच्चों की जो एसोसिएशन होती है, वहां आपने सब कुछ सही किया, आपने अच्छी पेरेंटिंग की, सो वहां पे अगर वो बिगड़ते हैं या गड़बड़ होती है, तो वहां पे हम कैसे हैंडल करें और स्कूल का क्या रोल है? राइट शिवानी जी, यही आपने पूछा मुझसे
जी।
हाँ, सो मैं ये कहूंगी शिवानी जी इस विषय में कि जब स्कूल की एज होती है ना, और खासकर ये जो 5 साल तक की जो शुरुआत की KG 1 KG 2 1 ईयर Class 1 Class 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए। खासकर यहाँ पे टीचर जो उस बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो उसके सेल्फ इमेज को इस तरीके से बनाते हैं कि वो आगे अपने लाइफ में फ्यूचर को डिसाइड कर पाते हैं, उसके चलते उनके फ्यूचर को वो इम्पेक्ट करता है। जैसे मानिए आपने और मैंने ये सब चीजें भुगत भोगी है, और भी लोग जो इसको सुनेंगे वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। जैसे आप मुझे बताइए, अगर हम रूट कॉज में जाके देखें कि हमको मैथ्स आज अगर अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं अच्छा लगता? सो कई बार आंसर आता है, क्योंकि पहले जब मैं मैथ्स बनाती थी तब मेरे मैथ्स टीचर ने मुझे डांटा और उसने ये बोल दिया कि तुझसे मैथ्स कभी नहीं बनेगा। उसके बाद मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगा और मैथ्स की वो टीचर भी अच्छी नहीं लगी। या कई बार ऐसा होता है कि पहले मुझे मैथ्स की टीचर अच्छी नहीं लगती, बाद में मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता
जी।
ऐसी चीजें होती है। तो फिर वो जिंदगी भर बच्चा जब भी कैलकुलेशन उठाएगा या कैलकुलेशन का काम आएगा, वो सबसे पहले पेन देखेगा। सो आपके लाइफ में आप किस चीजों से पेन अटैच करोगे और किस चीजों से प्लेजर अटैच करोगे, वो कई बार यहाँ पे आके अटकता है। वो कई बार यहाँ से होती है। और कई बार हमारे जो ट्रॉमास होते हैं जिसके कारण हम आगे लाइफ में सफर करते हैं, उसकी भी शुरुआत होती है। तो अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो एक बार आपको जाके वहां के टीचर्स की एक बार आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। एक बार आपको स्कूल में जाके चेक करना चाहिए कि टीचर का स्वभाव कैसा है, टीचर बच्चों के साथ बात कैसे करता है। क्योंकि अगर टीचर बहुत हार्ड वर्ड बोलता है तो वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के सेल्फ इमेज को स्क्रैच कर रहा है। और आप एक बात समझिए शिवानी जी, आप और मैं तो NLP सीखे हैं तो ये बात जानते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो सक्सेस है, वो हमारे सेल्फ इमेज के बराबर ही हमको मिलेगी। अगर मेरे मन में एक बार ये डाउट आ गया, किसी टीचर ने ये बात डाल दी या किसी बच्चे ने डाल दी कि मैं क्योंकि काली हूँ या क्योंकि मैं आज अच्छे से डांस नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैं भविष्य में डांसर नहीं बन पाऊंगी या भविष्य में XYZ अच्छा नहीं कर पाऊंगी, तो जिस दिन मैं बड़ी होंगी और मुझे वो एग्जाम देना होगा या वो चीज पास करनी होगी, मेरा माइंड मेरे ऊपर डाउट करेगा, मेरे कॉन्फिडेंस को लूज करेगा और इसके 99% चांसेस होंगे कि मैं उस चीज में लूज कर जाऊं
जी।
तो ये बहुत जरूरी है, ये जो टाइम होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमको ना थॉमस एल्वा एडिशन की मॉम के जैसे रोल प्ले करने की जरूरत है। थॉमस एल्वा एडिशन को माइंड से रिलेटेड बीमारी थी और जब उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया तो उनके टीचर को ये बात समझ में आ गई, तो कुछ दिनों तक के वो स्कूल गए और बाद में स्कूल से उनके नोटिस आया, उनकी मॉम के पास एक लेटर आया। उस लेटर में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, इसे किसी मंद बुद्धि के स्कूल में डालिए या अपने घर में रखिए, स्कूल मत भेजिएगा। सो थॉमस एल्वा एडिशन की मॉम ने इस बात को पढ़ा लेकिन कभी बताया नहीं, उल्टा ये बोला कि थॉमस तुम्हारे स्कूल से नोटिस ये आया है कि तुम्हारा बच्चा बहुत काबिल है, वो भविष्य में बहुत बेहतरीन कुछ काम करने वाला है और हमारे स्कूल हमारे स्टाफ इस लायक नहीं है कि वो उसे पढ़ा सके, इसलिए उसे स्कूल मत भेजिएगा, घर में पढ़ाइएगा। ये बात थॉमस एल्वा एडिशन को तब पता चली जब उन्होंने बल्ब का और ऐसे कई इन्वेंशन कर लिया, और बाद में उनकी मॉम के गुजरने के बाद जब उनके संदूक को टटोल रहे थे तो उन्हें वहां ये नोट मिला था। सो हमको इतना ध्यान रखने वाला पेरेंट वहां पे बनने की जरूरत है। ये एज बहुत खतरनाक है। और मैं बताऊं, जिस तरीके से आज सिक्योरिटी वाइज भी चीजें हो रही है स्कूलों में, हमें ध्यान रखने की बच्चों की बहुत जरूरत है, स्पेशली हमारी गर्ल चाइल्ड। एब्यूज जैसी कंडीशंस होती हैं और कई बार पेरेंट्स अपने जॉब के चक्कर में ये ध्यान नहीं देते।
जैसे आपने बताया कि स्कूल में टीचर्स बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस टाइप की चीजें उनको सिखा रहे हैं, वो चीज आपको देखनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि बहुत सारे स्कूल्स में अलाउ नहीं है आप क्लास में बच्चों के साथ बैठना, ऐसे में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं?
जी, ऐसे में सबसे पहले तो जब हम बच्चे का एडमिशन करवाने वाले हों तब हमको जाके ये सारी चीजें पता कर लेनी चाहिए और बच्चे के साथ इतने अच्छे से आपको बातचीत करनी चाहिए कि वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाए। वो आपको आके रोज की रिपोर्ट दे कि मम्मा आज ऐसा हुआ, आज मेरी सहेली के साथ ऐसा हुआ, आज मैंने ये देखा, आज एक बड़ी दीदी ऐसा कर रही थी। सो जब वो ये सारी चीजों के लिए फ्री होगी ना तो फिर वो ये सारी चीजों से बच पाएगी।
नहीं, लेकिन जैसे हमारी 0 to 5 year मीन्स 1 to 5 year की हमारी बात चल रही है, तो 1 to 5 year में तो बच्चा मीन्स 2.5 साल में 2 साल में तो बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है। लेकिन बच्चा ऐसा होता है कि वो एकदम इनोसेंट होते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे वो एकदम क्लियर बता नहीं पाते पेरेंट्स को।
सो ऐसे केस में शिवानी जी, सबसे पहले तो जब हम उस बच्चे का एडमिशन करवाने वाले हों सो उसके पहले हमको बकायदा पूरी उसकी सर्चिंग कर लेनी चाहिए कि वो जगह कैसी है, वहां जो लोग काम कर रहे हैं, इवन जो मैड वहां पे काम कर रही है वो कैसी है, और देखिए ये चीजें जो है ना पेरेंट टीचर मीटिंग में उठानी जैसी है कि ये हमारा हक बनता है कि हम आके ये देखें, क्योंकि आज माहौल खराब है सारी
जी
तरीकों से। तो
जी
ये अगर कोई स्कूल ऐसा कहता है ना कि आप आके चेक नहीं कर सकते, या आपको पता लगाने का हक नहीं है कि हमारे टीचर कैसे हैं। वैसे अब ये कम हो गया है, खुद बहुत सारे इंस्टीट्यूट वो बताते हैं कि हमारे टीचर, हम ऐसे टीचर को एक्वायर करते हैं, हम ऐसे टीचर को हायर कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों का मतलब आईडी कार्ड रख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो सब करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पीटीएम में ये बात उठाई जानी चाहिए।
जैसे वो अब तो तारीफ करेंगे ही, बोलेंगे हमने ऐसे टीचर्स को हायर किया है जो बहुत अच्छे से बच्चों को रखते हैं और उन्हें कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अंदर की बात पेरेंट्स को क्या पता कि क्या हो रहा है और कैसे बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, या फिर अगर किसी बच्चे पे हाथ भी उठा दें तो क्या पता चलता है।
जी, ऐसे में मैडम देखिए, आज के बच्चे थोड़े से ऐसे तो एडवांस हैं। अगर हम उनको गुड टच, बैड टच और ये सारी चीजें सिखा दे पहले से कि अगर ऐसा हो तो आप मेरे को बताना, सो वो हमको कुछ हद तक के हेल्प कर सकते हैं। और इसीलिए ना जब हम जाए अपने बच्चे को स्कूल से लाने, तब ये सारी चीजें एक बार ध्यान दें, इसकी जरूरत तो है।
ओके,
शिवानी जी, जहां तक कि आप कह रहे हैं ना कि हम ऐसा क्या करें जिससे पता चल जाए कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में क्या हो रहा है, तो
जी
एक चीज हो सकती है, एक बहुत छोटी सी चीज, वो ये कि स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हो ना, हर एक रूम में लगे होते हैं आजकल, हर एक क्लासरूम में होते हैं, है ना, उसका एक कनेक्शन हर एक माँ बाप के मोबाइल में होना चाहिए, जिससे वो अपने बच्चे के ऊपर नजर रख सके, है ना, उसके क्लास पे। तो उस चाइल्ड के साथ क्या हो रहा है, कौन उसके साथ एब्यूज कर रहा है, कौन उसको मार रहा है, पिट रहा है। कई बार, बहुत बार क्लास में टीचर नहीं होते हैं और उस बच्चे को कोई बच्चा जो है वो मार पीट देता है या बुरे तरीके से उसको घायल कर देता है, और बाद में बहुत सारे सीरियस इश्यूज हो जाते हैं, या फिर बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। तो अगर ऐसा होगा ना, तो बहुत हद तक ये केस और ये सारी चीजें जो है संभल सकती है। तो ये करना चाहिए कि स्कूल के कैमरे का एक एक्सेस प्रिंसिपल रूम में होता है, एक माँ बाप के पास भी होना चाहिए, और हर पेरेंट्स के पास ही होना चाहिए। क्या होगा, फीस चार्ज ही तो बढ़ेगी,
पेरेंट्स को ये परमिशन नहीं मिलती है
बट इसकी जरूरत है आज के समय पे, समय को
इसमें।
देखते हुए, एनवायरमेंट को देखते हुए, जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, मिस हैपनिंग्स हो रही है ना। सो उसके चलते ये बहुत छोटा सा उपाय है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करें तो कुछ ढंग का हो सकता है, अदरवाइज आपने जो बोला उसमें तो हम उस लूप में फंस जाएंगे। सारे जो हैं वो नए चीजों को इनवाइट कर रहे हैं, सारे जो स्कूल के क्या कहेंगे उनको फंड रेजर्स हैं, और जो भी स्कूल चलाने वाले हैं वो ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे में अगर कुछ कमियां हैं तो हम फीडबैक्स के लिए तैयार हैं, हम कुछ नया करने के लिए तैयार हैं, हम अपने स्कूल की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आखिर अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो स्कूल का भी नाम खराब होता है।
जी
और
जी
एक बात और बताऊं आपको, जो मुझे
जी
बहुत टच करती है, जो मैंने अपने पर्सनली काउंसलिंग के दौरान कई पेरेंट्स को सजेस्ट किया है, और
जी
आपका ये जो चैनल है वो बहुत कमाल का है, यहाँ बहुत अमेजिंग लोग इन चीजों को सुनते हैं, बहुत अच्छे फॉलोवर हैं, तो मैं चाहूंगी कि लोगों की लाइफ में इससे सच में बदलाव आए। देखो आज के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल और ये सारी चीजों में ध्यान देते हैं, और आज के क्या बोले, आप और मैं भी चाहते थे जब छोटे थे कि हमारे बहुत सारे दोस्त बने,
जी
लेकिन सच्चाई हम भी जानते थे कि 80% लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त नहीं होते हैं,
जी
जो दोस्तों के सर्कल के लिए तरसते हैं, रियलिटी है,
जी
जो ढूंढते फिरते हैं कि मेरे पास एक भी अच्छा दोस्त नहीं है।
इसमें मैं भी शामिल हूँ
और सोचो, आप और मैं आज मैच्योर हो गए, लेकिन उस छोटे से बच्चे के दिल में क्या गुजरती होगी जब उसके दोस्त नहीं बनते होंगे,
जी
और ये चीज हम लोग कभी पूछते ही नहीं, बच्चे के इस इमोशन को ध्यान ही नहीं देते, और बाद में वो बच्चे बेचारे उसी चीज को स्ट्रगल करते हैं और अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ढूंढते हैं क्योंकि वो कोई कि ढंग से कोई मिल जाए। और तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं शिवानी जी, इस कंडीशन में हम सबसे पहले तो उनके दोस्त बन सकते हैं,
जी
है ना। तो सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को उनका दोस्त बनना होगा। दूसरा, अब थोड़ा हो सकता है कुछ लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करें, लेकिन पर्सनली मेरे लाइफ में और जितने मैंने आज तक काउंसलिंग की उसमें ये चीज ने हेल्प की। दूसरा, मैं बोलती हूँ कि बच्चे को भगवान से जोड़ दो, भगवान को उनका दोस्त बना दो, गणपति बप्पा हो गए, शिव जी हो गए, जिन भी कास्ट में आप मानते हो, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि शायद दुनिया के कोई फ्रेंड साथ देना दे, वो अल्टीमेट फ्रेंड सबका साथ देते हैं
जी। अब ये क्यों नहीं मानेंगे, ये तो सबसे बेस्ट चीज है। और बोलते हैं ना कि वर्ल्ड वाइड फ्रेंड अलग और एक जो पूरा यूनिवर्स है वो आपका फ्रेंड एकदम अलग, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है।
आपके बच्चे को ना कभी सीक्रेट शेयर करने के लिए कोई और कंधे की जरूरत नहीं होगी, उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा मेरा सीक्रेट लूज हो गया, तो उसको कभी कमी नहीं होगी किसी की
जी जी
अगर
जी,
आप उनको जोड़ देते हैं तो। अच्छा शिवानी जी, आपने उनका नाम सुना है, स्मिता जयकर का, फेमस एक्ट्रेस है।
नहीं मैंने नहीं सुना।
उसमें वर्क किया, बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है वो, जैसे हम दिल दे चुके सनम में उन्होंने काम किया है, और उनमें एक ऐश्वर्या राय की मम्मी बनी थी वो। अब मैं कर सकती
जी जी हाँ जी हाँ जी
है ना, आप रिलेट कर पा रहे हैं। वो आजकल ऐसे कुछ बालों को वो सफेद रखते हैं और बाकी को ऐसे ब्लैक, बीच में ये ट्रेंड चलाया था उनका, शायद अब आप रिलेट कर पाए। तो स्मिता जयकर जो है वो इन दिनों अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस लेती हैं। मैंने पर्सनली उनकी क्लास में ये चीजें सीखी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। डेट विथ मूज करके एक सेशन लेती हैं, उसमें वो यही कराती हैं कि लोगों को भगवान से जोड़वाती हैं। बोले भगवान को दोस्त बनाओ, आपका मूज जो है ना, जो आपका डेट है वो भगवान होने चाहिए, आपको जिंदगी में कमी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। अगर बच्चों को ये कराया जाए, हम खुद भी करें, तो हमारी और बच्चे की लाइफ बहुत शॉर्ट होगी, बहुत काम डाउन होंगे।
ये आप जो चीजें शेयर करते हैं, और सही में मैं बहुत ज्यादा लकी फील करती हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जो भी मेरे साथ पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं, तो उनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे लिसनर्स को तो मिलता ही है, लेकिन मुझे भी बहुत मिलता है।
मैं ये बोलूंगी कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली कह रही हैं, और मैं बल्कि यहाँ पे ये कहूंगी कि आपसे ज्यादा हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पे आते हैं और लोगों की सेवा करने की हमको एक नीड जो हमारी होती है ना, जो हमारी एक इनर नीड होती है, वो पूरी हो पाती है आपके थ्रू और ऐसी चीजों के थ्रू। तो हमको शुक्राना अदा करना चाहिए कि आपने हमको ये मौका दिया।
थैंक यू सो मच। तो अभी मेरा जो एक सबसे मेन पॉइंट आता है कि आपके जब बच्चों की अपब्रिंगिंग चल रही है, और आजकल सबसे ज्यादा मेन जो इशू है बड़ों में हेल्थ को लेकर तो है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ जिसकी आप बात करते हैं उससे बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा सोचना, ये सब चीजें हैं। तो इसमें जब बच्चा जब से समझने लगता है 3-4 साल से, तो मेडिटेशन और अफर्मेशन का इसमें क्या रोल है, और क्यों बच्चों को ये वाली चीज करवानी चाहिए, और इस चीज के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए सारे पेरेंट्स में?
हाँ जी हाँ जी। सो शिवानी जी, बेसिकली आप ये जानना चाह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ बच्चे की अच्छी कैसे करें
जी,
और उसमें मेडिटेशन का भी अपन अगर इंटीग्रेट करें, अफर्मेशन करें, तो वो कहाँ तक, किस हद तक के हेल्प कर सकता है?
हाँ
मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में अगर हम देखें, और वाकई बच्चे जिस तरीके से स्टडीज के नीचे, लोगों के दबाव के नीचे, जितना आज प्रेशर है कि भाई सबसे जल्दी हमको करियर बनाना है, उसमें बहुत ज्यादा बहुत छोटे से एज में दबे हुए हैं। घर में ये चीजें निकलती है लोगों के सामने, बच्चों के सामने, कि बेटा तेको कुछ करना है, कुछ बनना है, तू भाग, मतलब भागते जा कंटिन्यूसली। सो इसके कारण उनका मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा आज डिस्टर्ब है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन तो यही है कि बच्चे को रुकना भी सिखाएं, उसको पॉज भी दें, उसको रिलैक्स करना भी सिखाएं। अगर आप उसको कंटिन्यूअसली दौड़ाएंगे ना कि भैया तू कर, आज तू गिटार भी सीख, आज तू डांस भी सीख, आज के दिन तू सिंगिंग भी सीख, आज के दिन तू फूड रेसिपी बनाना भी सीख, आज के दिन तू पढ़ाई भी कर, सो फिर उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी। आखिर आप मेडिटेशन करा रहे हो, वो रुकने के लिए तो करा रहे हो
जी,
वो लाइफ में पॉज लाने के लिए करा रहे हो
जी,
कि उसके अंदर इजीनेस है, उसके अंदर कामनेस है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली उसको 6 चीजें में लगाएंगे, एंगेज करेंगे, तो मेंटल पीस कहाँ से आएगी? फिर तो वो पीसेस में ब्रोक हो गई ना
जी।
सो एक एक लिमिटेशन में हमको उसको चीजें देनी है कि मतलब ठीक है बेटा रिलैक्स होके कर, जितना हो सके उतना कर। हालांकि ये भी नहीं करना है, कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं जो एकदम ही छोड़ देते हैं, और कुछ पेरेंट होते हैं जो एकदम कस के रखते हैं, दोनों में ही बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब होती है। सो उसको एक सही वो बैलेंस तरीके से आपको पेरेंटिंग करने की जरूरत है कि नहीं करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि तू टूट जाए, पर ऐसा भी नहीं होगा कि तू नहीं करे और काम चल जाए। सो पहले तो मेंटल हेल्थ में ये एक जरूरी चीज आएगी। दूसरा, मेडिटेशन बच्चों को जरूर करवाना चाहिए ताकि उसके अंदर कामनेस आए। अगर एनर्जी वाइज देखें तो हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी से बनी हुई है, राइट शिवानी जी?
जी एकदम से।
बॉडी के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम ऑरा कहते हैं।
जी
उन ऑरा में क्या होता है, चक्र होते हैं। चक्र मतलब एक तरीके से आपके एनर्जी को गाइड करने वाले सेंटर्स।
जी
पहले यूनिवर्स से एनर्जी आपके ऑरा में आती है, ऑरा से चक्रों में आती है, चक्रों से ऑर्गन्स में जाती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं सो ये चक्रों पे इम्पैक्ट होता है, मतलब ये जो चक्र हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं। इनकी जो फ्रिक्वेंसी पे, देखिए हमारी एनर्जी फील्ड जो है एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है ना
जी।
हम लोग एक तरीके से रेडियो हैं, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है है ना,
जी।
और अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर लो है फ्रिक्वेंसी तो हम गुस्सा करेंगे, हम हैट्रेड में आएंगे, हम डिप्रेशन में आएंगे। फ्रिक्वेंसी हाई है तो हम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी अच्छी होती है, हम लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी की ओर जाते हैं। हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे चक्र बैलेंस होते हैं, कोऑर्डिनेशन में आते हैं, हमारी जो यूनिवर्स से एनर्जी लेने की कैपेसिटी है वो सुधरती है। क्योंकि कंटिन्यूसली आप कचर 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 में लगे हुए हैं तो एनर्जी आपकी ब्लॉक होती है। यूनिवर्स से जो एनर्जी आपके अंदर फ्लो होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होती है, आप स्वस्थ रहते हैं, वो नहीं आ पाती। और जब आप मेडिटेशन करते हो, शांत हो जाते, बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ देते हो, यही होता है मेडिटेटिव स्टेट में, है ना सर? सो उस समय आप यूनिवर्स से ट्यून कर पाते हो। सो मेडिटेशन का डेफिनेटली रोल है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं मेडिटेशन, अब एक बात ये आती है कि शिवानी जी बच्चे हैं आप कितनी देर कराओगे,
पहले 5 मिनट से स्टार्ट करें।
मैं एक चीज इसको बोलूंगी शिवानी जी, जो मैंने बच्चों के साथ सेशन लिए, जैसे मैंने आपको उसमें बोला भी था जब मेरी आपसे बात हो रही थी कि मैंने 28 कुछ सेमिनार लिए हैं स्कूलों में, और ऐसे भी मैं कई बार बच्चों की वर्कशॉप लेती हूँ। सो वहां पे मैंने जो सबसे बेसिक स्टार्ट किया वो मैं बताती हूँ। मैंने पहले कुछ दिन उन बच्चों को सिर्फ इतना कराया कि वो अपनी हार्ट बीट सुन सके, आंखें बंद करें और पूरा फोकस सिर्फ अपने हार्ट बीट पे ले जाएं। 20 सेकंड के मेडिटेशन से शुरुआत कराई। क्यों? क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत हाइपर हैं, वो सीधा नहीं बैठते, उनके लिए 20 सेकंड भी उनको बतलाना बहुत होता है।
जी,
और मेडिटेशन का इम्पैक्ट आपके हॉर्मोन्स पे भी होता है। सो मेडिटेशन भी कराए तो एक निश्चित समय तक के 5 मिनट 10 मिनट पर्याप्त है। बड़े बच्चे हैं 12-14 साल के, तब भी वहां पे भी मैं बोलूंगी कि हद से अगर आप उसको मैक्सिमम 15 मिनट करने दें, क्योंकि ओवर मेडिटेटिव स्टेट में भी उनको नुकसान हो सकता है, ओवर मेडिटेटिव स्टेट में भी उनको बहुत सारी चीजें और वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो उनको अभी उस एज में अपने को नहीं करवानी, क्योंकि सेंटर्स ओपन होंगे ना अलग अलग एनर्जी के, सो उनको फीलिंग भी बहुत सारी होंगी, उनके सुपर सेंसेस भी वैसे स्ट्रांग होंगे। सो ये है, मेडिटेशन ऑफकोर्स कराना है। और एक चीज और शिवानी जी, अगर हम उनको मेडिटेशन के साथ साथ मेडिटेटिव वे में जीना सिखा दें कि काम को फोकस्ड रह के कैसे करते तो वो और अच्छा होगा।
कैसे क्या कर सकते हैं?
कैसे फोकस रहना सिखाएं? तो उनको सबसे पहले तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या अच्छा है वो देखने की आदत डलवाएं। जब वो ये देखेगा ना कि अच्छा प्रेजेंट मोमेंट में भी चीजें अच्छी है, ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस डालना चालू करेगा। सबसे पहले उसको ग्रेटफुल रहना भी सिखाना होगा उसके लिए, और प्लस उसको अपने आपको ये अफर्मेशन देना पड़ेगा कि मैं तो वो इंसान हूँ जो फोकस्ड रह सकता है या रह सकती है। हम ही बच्चे को सिखाते हैं ना, तू तो भूल जाती है, हमें सिखाते तो याद नहीं रहता, तू तो तेरा तो फोकस खराब है।
जी,
कि फोकस का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम उसको सेल्फ अफर्मेशन यही दे कि बेटा तू फोकस्ड रहता है और तू फोकस्ड रह सकता है, धीरे धीरे अब चीजें सही हो रही, देख तूने आज ये किया। और उसको भी अंदर से ये अफर्मेशन कहने के लिए कहें कि मैं फोकस्ड रहने वाला इंसान हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जी
जी जैसे अभी आपने मेडिटेशन का और अफर्मेशन के लिए बच्चों के लिए बताया, लेकिन एक चीज मैं इसमें पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी बात हो रही है चाइल्ड की अपब्रिंगिंग को लेकर, तो आपने सबसे पहले कहा कि इसके लिए पेरेंट्स जो मदर्स है उनको भी अपने आप में बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है, उन्हें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा तब जाके आपका बच्चा बदलेगा, राइट?
जी जी।
एक चीज इसमें और आती है कि मेडिटेशन मदर्स हैं, वुमेन्स है, घर को संभालती है, फैमिली को संभालती है, मैनेज करती है, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली इशू को लेकर वो परेशान हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो अपना जो गुस्सा होता है वो अपने बच्चे पे निकालती है, राइट
राइट राइट।
तो उस टाइम पे मेडिटेशन उनके लिए भी जरूरी है।
ऑफ कोर्स डेफिनेटली बिल्कुल जरूरी है और बिल्कुल करना चाहिए, और बहुत सारे तरीके हैं उनके लिए मेडिटेशन करने के, और आज तो बहुत सारे तरीके निकल चुके हैं, सिर्फ ध्यान में बैठ के ही मेडिटेशन करना एक वो नहीं है। और एक चीज और मैं बोलूंगी, जहां बात आती है ना कि पेरेंटिंग में हम लोग ये बोलते हैं कि मदरिंग होती है, कि मदर का काम है कि वो संस्कार दे, लेकिन मैं ये बोलूं कि शब्द मदरिंग नहीं था ना, शब्द तो था पेरेंटिंग
जी,
ना मदरिंग था ना फादरिंग था, पेरेंटिंग था। तो कायदे से तो रोल दोनों का है,
दोनों
पर
का
इंडिया
है।
में और ये ऐसे बोलूं कि पूरे विश्व का ये हाल है कि मदर इस चीज को ज्यादा करती है,
राइट।
तो इसीलिए कई बार ये होता है कि हमारे जो गुण नहीं भी है ना वो भी बच्चे में जाते हैं, जिसे हम बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स में दूसरा पेरेंट जो होता है वो इस चीज का रोल नहीं लेता। जैसे माँ ये करती है कई बार कि वो अपने जिद्द वाले स्वभाव को बच्चे के सामने नहीं दिखाती कि वो बच्चा जिद्दी नहीं हो, लेकिन कई बार बाकी घर के लोग इस चीज को दिखाते हैं। सो पेरेंटिंग में ये कमी तो आएगी, और ये चीज मैं ये कहूंगी, ये जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि सबसे अच्छी पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ये करना चाहिए कि बच्चे को भी ये सारी चीजें समझानी चाहिए कि भैया घर का ये हाल है, इस चीज को तू समझ। और ऐसा जब मैं डील कर रही हूँ तो मुझे गुस्सा आ सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे से प्यार नहीं करती। आप उसके साथ अगर ये सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं, इवन अगर बच्चा आपका 5 साल का है, 6 साल का, 7 साल का, वो इस चीज को समझेगा, ये धीरे से समझाइए, सो आपका और उसका गैप कम होगा। और एक चीज और, जैसे आपका बच्चा जिद्दी है या बहुत गुस्सेल है, सो अगर आपको आपने पेरेंटिंग की चीजें ट्राई की है, आपने अफर्मेशन ट्राई किया, आपने सब टेक्निक यूज करके देख ली, लेकिन नहीं कंट्रोल हो रहा, उसका खानदानी लक्षण है कि वो जिद्दी है, पूरे खानदान भर के लोग जिद्दी हैं, गुस्सेल है, तो वो बच्चा भी गुस्सेल है, तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगी आपको शिवानी जी, देन आपको या जो भी इस चीज को सुन रहा है उसे बैच फ्लावर की मेडिसिन का हेल्प लेनी चाहिए। बैच फ्लावर रेमेडीज का क्या होती है, बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ शिवानी जी। नॉर्मली ये फ्लावर के अर्क होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, डिस्टिल वाटर में डाला जाता है, उसका अर्क निकाला जाता है, देन उसको अल्कोहल में या ब्रांडी में कुछ लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। और ऐसा माना जाता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, वो यूनिवर्सल एनर्जी को, अर्थ फोर्स को कंटेन करते हैं, है ना, और वो भी हाई वाइब्रेशन कंटेन करते हैं, हम भी हाई वाइब्रेशन कंटेन करते हैं, और क्योंकि हम वाइब्रेशनल बींग्स हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे एलोपैथी में हम देखते हैं ना कि केमिकल ड्रग है, तो उससे हमारे बॉडी को नुकसान होगा कि केमिकल अगर हम खा रहे हैं या बच्चे को दे रहे हैं तो उसको कहीं नुकसान हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फूलों का अर्थ है, और आप और मैं गुलाब की पंखुड़ियां खाए हैं, गुलकंद हमने खाया है, हमारे यहाँ अगर किसी को घाव लगता था तो पहले गेंदे का जो फूल होता है, पत्ता होता था, उसका रस लगा के लोग वहां घाव को भर देते थे। सो ये नेचर की चीजें हैं, हम आराम से इसको यूज किए हैं, सो बेस्ट फ्लावर का हम यूज कर सकते हैं, उसमें फूलों का अर्क होता है, और ऐसा माना जाता है, उसका बेसिक सिद्धांत ये है कि माइंड से बॉडी में बीमारियां आती है
जी,
है ना। सो माइंड से जब बीमारियां बॉडी में आती है तो अगर ठीक भी हमको करना है तो माइंड के लेवल पे उसको सही करने की जरूरत होती है। सो बेस्ट फ्लावर इसी सिद्धांत पे काम करते हुए 38 फ्लावर्स को उन्होंने इजाद किया, किसने, डॉक्टर बैच ने। और 38 फ्लावर क्या है, 38 बेसिकली वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में 38 टाइप के लोग होते हैं, है ना, जैसे उसमें एक फ्लावर है वाइन, है ना, वाइन के जो फ्लावर है वो वाइन जो मतलब अंगूर की जो लता होती है उसमें लगने वाला फूल का अर्क होता है। सो वाइन का काम क्या है, बेसिकली वाइन जो रेमेडी है वो उन लोगों को हम देते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, जो स्वभाव से एकदम अक्खड़ होते हैं, जो मेरा मैंने बोल दिया वही चलेगा। ऐसे ही वॉलनट करके एक मेडिसिन आती है जो आपके जैसे खानदानी जो बीमारियां होती है उसको तोड़ने के लिए दे, जैसे आपका बच्चा है वो आज आपके घर में जब पॉटी जा रहा है तो उसको पॉटी आ रही है, लेकिन अगर वो नए घर में शिफ्ट हो गया तो उसको पॉटी नहीं आ रही। सो ऐसे कंडीशन में वॉलनट रेमेडी को देते हैं। और जैसे मान लीजिए जब भी हम नए चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, जैसे एक टीनेजर है वो अभी तक के छोटा था, उसके बॉडी में अलग हार्मोन निकलते थे, अब टीनेज आई अब अलग हार्मोन निकलेंगे, उस समय क्या हो रहा है उसको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पे वॉलनट हेल्प करता है। चेस्टनट बड मेमोरी के लिए देते हैं, आप बोल रहे थे ना फोकस कैसे बनाएं, तो चेस्टनट बड करके जो रेमेडी है ना उसको हम देते हैं इस समय, जैसे फोकस बढ़ाना है, मेमोरी बढ़ानी है, बच्चे को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, एग्जाम हॉल में भूल जाता है, ये सारी चीजों की रेमेडी है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने की भी इवन लार्ज करके इसमें मेडिसिन है।
तो एक चीज मैं इसमें पूछना चाहती हूँ, जैसे मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है, शायद बहुत सारी ऑडियंस है जो इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रही होगी। ये जो आप बता रही हैं, तो ये सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं और अलग अलग रेमेडी मीन्स अलग अलग इमोशंस के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए दिए जाते हैं।
जी बिल्कुल, 38 मेडिसिन है, 38 टाइप के जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं उसके लिए दी जाती है ना। और बिल्कुल देने का तरीका एकदम आसान है, आपके बच्चे इसको ले पाएंगे। जैसे हम लोग होम्योपैथी में लेते हैं ना पिल्स के फॉर्म में
जी
या फिर पानी में, तो ऐसे ही इसको लेते हैं।
अच्छा, तो लेकिन जैसे इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? ये वाली जो चीज आप बता रहे हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं। और जैसे आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहें इन चीजों को लेकर, कि कितने पेरेंट्स की हेल्प हुई है इन, अगर इन्होंने ये चीज यूज की है तो?
हाँ जी बिल्कुल। शिवानी जी देखिए, इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये फ्लावर की मेडिसिन है। आपने आज तक के कभी सुना है कि आपने गुलाब का इत्र लगाया हो या गुलाब की पंखुड़ी खाई हो और आपको डिसेंट्री हो गई हो
नहीं
या लूज मोशन हो गए हो? नहीं हुए ना,
जी,
क्योंकि वो नेचर की चीजें और हम भी नेचर के हिस्से हैं। सो इसी तरीके से बैच फ्लावर के साथ है। और जैसे कि आपने बोला कि कितने लोगों ने आज तक इसका यूज किया है, सो मेरे पर्सनली मुझे क्लिनिक चलाते हुए 5 साल हो रहे हैं। 5,000 से कई गुना, कई मैंने ज्यादा मरीज देखे हैं। 5,000 तो मैं कितने समय से बोल रही हूँ, मुझे खुद भी ये याद नहीं संख्या। और उन सबको मैंने बैच फ्लावर और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ही ट्रीट किया है। अब जैसे बैच फ्लावर की बात आती है, तो मैं आपको बताऊं कि जब एग्जाम का टाइम आता है तो मेरे पास इसी चीज के सबसे ज्यादा मरीज होते हैं कि मेरे बच्चे का कल एग्जाम है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, उसको उसी दिन सुसु पॉटी लगती है, उसी दिन सुबह से लूज मोशन लगती है जब उसको एग्जाम देने जाना है। ये पेपर में जाके ब्लैंक हो जाता है, एग्जाम हॉल में जाते साथ सब भूल जाता है। आप इसको दवाई दो, इसका कल इंटरव्यू है, इसको दवाई दो। सो इस तरीके से रिमेडीज हम देते हैं और लोगों को सच में इससे आराम होता है।
जैसे अगर उनका 20% है, कितना परसेंट और इंक्रीज हो जाता है? और कितने लोगों ने अभी तक आपको इसके लिए कहा है? सोचा भी नहीं था कि इस टाइप से इतना अच्छा परफॉर्म करेगा।
जैसे कि क्या होता है ना, हमने एग्जाम पूरा दिया लेकिन बच्चे के मन में डर है कि पता
जी
नहीं मैं पास होंगी नहीं होंगी, डाउट भी है और डर भी है। तो डाउट के लिए हम दवाई देते हैं उनको जेंसियन, है ना, जो शक का इलाज है। एक हकीम लुकमान हुआ करते थे, उनके पास शक का इलाज नहीं था, बट वेज फ्लावर में जेंसियन करके रेमेडी है जो शक के इलाज करती है। और ऐसा हमने कई सारे स्टूडेंट्स को देके देखा है। सबसे पहले तो खुद यूज करके देखा जब हम कॉलेज के टाइम पे थे और ये सारी चीजें सीखी थी, तो सबसे पहले खुद के ऊपर ट्राई करके देखा कि चलो कॉन्फिडेंस वाली दवाई लेके देखते हैं और
जी
वायवा कल का देके देखते हैं कि कल एक्सटर्नल जब आ रहा है तब उसके सामने परफॉर्मेंस कैसी होगी। सो हमने लार्च ली, फिर कुछ घंटे के बाद हम वहां पे वायवा देने पहुंचे। सो वो बहुत अच्छा गया, फिर दोबारा ट्राई करके देखा क्योंकि ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने शायद अच्छे से पढ़ा हो, ये एक्सटर्नल भी थोड़ा हमको लूज लगा हो तो हमने अच्छे से दे दिया हो। सो फिर कुछ बार ट्राई किया और जब विश्वास आ गया कि नहीं ये काम कर रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, कभी अटेंशन बढ़ा रही है। अच्छा, उसमें एक मेडिसिन है ऑलिव, कई बार बच्चे के हाथ थक जाते हैं लिखते लिखते, कई
जी
बार हम एग्जर्शन में आ जाते हैं बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के। और मेडिकल की पढ़ाई ऐसी होती है, तो जब हमने पढ़ा था कि ऑलिव करके मेडिसिन होती है, तो पहले ऑलिव खुद खा के देखा कि वाकई में मैं जो इतना पढ़ रही हूँ एग्जाम से पहले, मुझे थकान हो रही है, वो कम होती है कि नहीं। सो उसने हेल्प की, फिर और बच्चे को दिया और अपने आस पड़ोस में दिया, देखा अच्छा आराम हो रहा है, फिर डिक्लेयर कर दिया व्हाट्सएप में फेसबुक में कि ऐसी ऐसी बीमारियां हैं तो आ जाओ हम ठीक करते हैं। फिर उन्होंने लिया और ऐसे करते करते वो पूरा सीन चला और ऐसा लोगों को आराम हुआ।
मुझे एक चीज इसमें समझ में नहीं आ रही कि काम कैसे करता है। मींस कैसे हो सकता है कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए अलग दवाई, आपकी थकान के लिए अलग दवाई, आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए अलग दवाई? मींस मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। और कैसे ये काम करता है, प्लीज आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मुझे
हाँ
बहुत
जी,
ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है।
बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि देन वो पूरा बहुत बड़ा साइंस है बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि बेसिकली हम सब वाइब्रेशनल बींग्स हैं। और
जी
इन जब हम अर्क लेते हैं इन दवाइयों का, तो उन अर्क में उन फ्लावर्स का वाइब्रेशन को कैप्चर किया जाता है ना, जिस
ओके
तरीके से उसको बनाया जाता है उसमें उसकी वाइब्रेशंस आ जाती है उस फूलों की। और देखिए, नेचर में जो फ्लावर्स हैं वो भी हमारे तरीके से स्ट्रगल करते हैं, है ना। जैसे हम ठंडी आती है तो हमारे अंदर की बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, वैसे फ्लावर की चेंज होती है, जैसे हम में बिहेवियर है वैसे फ्लावर्स में बिहेवियर है। और होम्योपैथी का ये सिद्धांत है, या ऐसा कहूँ कि मेडिकल का एक सिद्धांत है, क्यूरेंटर सिमिलस, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स से इलाज होता है, समान से समान का इलाज होता है, ऐसे दो सिद्धांत है मेडिकल साइंस से मानता है। सो जब ये देखा जाता है कि अच्छा उस फ्लावर के गुण भी इस इंसान के जैसे हैं, है ना, या बिल्कुल उससे ऐसे है कि उसका काट है, तो फिर उसको वो दवाई दी जाती है। जैसे उसमें एक रॉक वाटर करके मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा एकदम हट धर्मी होते हैं, जो बोलते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए।
जी,
पर ऐसा होता है कि लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बीमारियां भी वैसी होती है। जैसे स्टोन है, वो पत्थर हो गया, तो रॉक वाटर क्या है, बेसिकली झरने का पानी है। फ्लावर मेडिसिन में ये एक वाटर मेडिसिन भी ऐड है। तो झरने का पानी क्या करता है, वो पहाड़ को चीर के निकल जाता है, मतलब उसमें उतनी पोटेंशियल होती, तो उस बीमारी में वैसी दवाई दी जाती ताकि वो उस चीज को हिट करे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी पत्थर के जैसा क्या हो गया है, मानसिकता हो गई है। तो उसको समझ के मैं चीजें आपको ज्यादा क्लियर कर पा रही हूँ।
बहुत अच्छे से हो रही है, आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी हो रही होंगी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मींस आप दवाइयों से लोगों का जो पूरा माइंड की जो मेंटेलिटी है वही चेंज हो जाती है।
जी जी बिल्कुल, और हो जाती है, और एक बहुत ज्यादा समय नहीं लगता।
ओके, कितने दिन लगते हैं मींस?
इवन जैसे हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते भर पहले से, या कई बार क्या होता है, पेरेंट्स 2-3 दिन पहले बच्चे को लेके आते हैं कि बच्चे को कॉन्फिडेंस की दवाई दो। सो उतना अप टू द मार्क तो नहीं है ना, लेकिन हम बहुत हद तक उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में सफल होते हैं।
जो ये मेडिसिन है, ये क्या बड़ों पे भी असर करती है?
हाँ जी हाँ जी, मैं इसको ऐसे कहूंगी कि गर्भवती महिला से लेके 90 साल तक के लोगों को हम ये दवा देते हैं।
ओके, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए वो कैसे हेल्प करती है?
प्रेग्नेंट लेडी को भी कई बार डर होता है, जैसे किसी लेडी का एबॉर्शन हो गया, कंटिन्यूअसली मिसकैरेज हो रहे हैं, तो उसके अंदर एक डर है, तो उसको डर की मेडिसिन देते हैं ताकि वो ओवरकम कर सके। जैसे हमने कोरोना के समय में अभी लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक था, कोरोना से डर लग रहा था, तब हमने उनको दवाइयां दी थी ताकि वो अच्छे से जी सके, वरना हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना के डर के कारण कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी हुई
जी,
कितने लोगों को और सारी बीमारियां हुई।
एक चीज और जानना चाहती हूँ कि इसकी चार्जेस क्या होते हैं?
चार्जेस जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग इसको चार्ज करते हैं, मैं पर्सनली क्योंकि सेवा भाव से करती हूँ, सो मैं फीस चार्ज नहीं करती, जो मेडिसिन का होता है वही करती हूँ। सो मेरे हद से अगर आप महीने भर की मुझसे मेडिसिन लेते हैं, तो हद से वो आपको कोरियर चार्ज के साथ मिला के 200 के अंदर पड़ती है।
वरना जैसे इसका क्या चार्ज होता है?
वरना अलग अलग डॉक्टर अपने हिसाब से लेते हैं, ये ऐसा बोलूं अलग अलग कंपनी के अलग अलग दवाइयों के रेट होते हैं, वो ब्रांड के ऊपर होता है। जैसे हम लोग टाटा नमक लेते हैं, वो 12 रुपए का होता है, कोई और नमक लेंगे वो 34 रुपए का है।
अच्छा, इसमें भी प्रोडक्ट की क्वालिटी।
हाँ जी, फिर भी ऐसे कर सकते हैं कि या तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, या जिस भी आप बैच फ्लावर वाले से कंसल्ट करते हैं, या कई बार ये बैच फ्लावर की जो रेमेडीज हैं आपको होम्योपैथिक शॉप में मिल जाती है। सो होम्योपैथिक शॉप भी कोई ना कोई डॉक्टर ही चला रहे होते हैं, तो उनके गाइडेंस में आप ये ले सकते हैं।
ओके, तो ये होम्योपैथी डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं?
नहीं ऐसा नहीं है, बैच फ्लावर के अलग डॉक्टर भी होते हैं, मगर क्योंकि होम्योपैथी वे में ये चलती है, जैसे उसमें डाइल्यूशन आते हैं, इसमें डाइल्यूशन आते हैं, तो इसलिए वो भी इसको यूज करते हैं।
ओके, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने मेरे साथ शेयर की है, और वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ये सारे मदर्स के लिए, क्योंकि अभी मुझे जहां तक लगता है आई थिंक ये इस चीज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
Right? बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है शिवानी जी, अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैं बोलती हूँ पहले जाके एक बार बैच फ्लावर डॉक्टर ढूंढो, इलाज करवा के देखो। आप एक बार नेट में जाके सर्च कीजिएगा BATCH बैच फ्लावर रेमेडी, या BACH बैच फ्लावर रेमेडी, दोनों बक फ्लावर कहीं लिखते हैं लोग, कहीं BATH लिखते हैं, नॉर्मली डॉक्टर एडवर्ड बैच ने इसको निकाला है, तो बैच है बट ठीक है, वो चलता है, वो आप सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगी। और इवन आप खुद भी इन चीजों की पढ़ाई करके समझ के इन चीजों को मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत सिंपल है इसे यूज करना।
बहुत ही बढ़िया, क्या कहूँ मैं,
बहुत कमाल की है इसमें। और सिर्फ मानसिक नहीं, बहुत सी शारीरिक बीमारियां भी इससे ठीक होती है, कैंसर पेशेंट है, यूट्रस प्रोलैप्स की परेशानी है, पाइल्स है, लोगों को इवन कॉमन कोल्ड अगर ठीक नहीं होता इससे ठीक होता है कई बार।
यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि ऐसी चीज भी होती है।
ये जो हमारी बैच फ्लावर रेमेडी है, ये इंडिया में कम पॉपुलर है अभी, और लेकिन विदेशों में अगर आप देखें तो ये इसके बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा इसके क्लिनिक्स है। लेकिन हाँ, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ये आराम से मिल जाएगी।
अभी तक यहाँ पे अपने कितने लोग यूज कर चुके हैं?
इंडिया में आए भी आई थिंक 60 साल से ऊपर हो रहा है, क्योंकि
कितना
60 साल होंगे आराम से।
60, 60.
क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों की मैंने बुक्स पढ़ी है उनकी जो एडिशंस लिखे होते हैं ना, नीचे सन लिखा होता है कि इस सन में ये पुस्तक छपी, सन में ये बनी, तो उससे मैं ये बोल सकती हूँ। क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस देते हैं कि मैंने इस मरीज को ये दवा दी, वो ऐसा ठीक हुई, इतना महीने के बाद उसने ये रिपोर्ट दी।
लेकिन 60 साल हो गए इस रेमेडी को आए हुए, लेकिन फिर भी इसके बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं है?
ये आपने बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछा शिवानी जी। अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग क्विक फिक्स ढूंढते हैं, हम लोग सब दबाने में तुले हैं ना। पेन हुआ, पेन किलर खा लो, सर्दी हुई एंटीबायोटिक खा लो, कोई रूट कॉज में जाना ही नहीं चाहता, भले दोबारा खानी पड़े वो चीज या जितनी लंबी खींच जाए, मेन कारण ये है। और दूसरा, हम आज भी मेडिकल साइंस में जब बोलने जैसी चीज नहीं है, मगर बाकी जो पैथीज होती हैं या जो अवेयरनेस की चीजें हैं उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। कितने लोग लिटरली इस चीज को सच में लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, आप बताइए। मेंटल हेल्थ की चीजें जो हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मगर ये अवेयरनेस होनी चाहिए, और आई थिंक होगी लोग, क्योंकि अब थक चुके हैं सब चीजें कर करके।
ये सही कहा, अभी लोग ज्यादातर हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, जो नेचुरल चीजों से वो रिकवर होना चाहते हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और आफ्टर कोरोना के बाद इन्हीं चीजों पे लोग काम कर रहे हैं। और किस चीज में ये काम करता है?
जैसे ये होता है ना कि घर में छोटा बेबी आया, उसके बाद जो बड़ा बच्चा है उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई, लोगों के अंदर जलन की भावना है ना, घर में पारिवारिक क्लेश है, लोगों को बार बार घाटे लगते हैं, इन सब का इलाज भी इवन बैच फ्लावर में है। नशे का इलाज है, व्यसन का इलाज है, लोगों को स्मोकिंग की आदत है, लोगों को इवन कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा, लोग बोलते बिना कारण डर लग रहा है
जी,
समझ ही नहीं आता, डॉक्टर परेशान है, अरे सब सही है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर क्यों डर रहा है
जी,
ऐसा भी है, सो इसका इलाज है।
मुझे पता है आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट वे में चला गया है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है, और मुझे लगता है मैंने इसीलिए आपसे इतना डिस्कशन किया है क्योंकि सारी मदर्स है ना इसी चीज का इलाज ढूंढती है कि मैं मेरे बच्चे को कैसे उनका एंगर कम करूं, कैसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करूं, क्या ऐसा करूं जिससे उसे बहुत अच्छे से और जल्दी से रिजल्ट मिले और नेचुरल वे में रिजल्ट मिले। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए आज मैंने आपके साथ पूरा डिस्कशन किया इसके बारे में कि सभी को पता चले, जो सवाल मेरे मन में थे वो सवाल मेरे थे उनके भी शायद सॉल्व हो गए हो।
आई होप सो। और कोई चैलेंज नहीं है, अगर किसी को और भी कोई डाउट हो तो वो आपको तो कमेंट कर ही सकते हैं, मुझे भी सोशल मीडिया में ढूंढ के, मैं सभी जगह हूँ और इसलिए हूँ ताकि लोगों की हेल्प कर सकूँ, मुझे यही काम तो मेरा है
जी। मैं लिंक डाल दूंगी, और आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डॉक्टर आशी जी इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनके नंबर और सब अपलोड कर दूंगी, तो जरूर कांटेक्ट करिएगा। बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, दोनों परेशान होते हैं कि मदर अगर गुस्सा है किसी चीज को लेकर तो उनका गुस्सा हमेशा अपने बच्चों पर निकलता है, उसका बच्चे पर क्या इफेक्ट आता है?
जी बिल्कुल शिवानी जी, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत रेलिवेंट है, और मैं ये बोलूंगी कि गुस्सा तो निकलता है और इससे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। गुस्सा निकालना ऑफकोर्स या नहीं निकालना है ये मदर के हाथ में है, ये कॉन्शियस डिसीजन है, और आई थिंक मदर को हमेशा ये चूज करना चाहिए, ये समझने की बात है कि आखिर वो बच्चा है और उन्हीं का बच्चा है, तो कम से कम इस बात को अगर वो एक बार सोच लेंगे ना उसके ऊपर रिएक्ट करने से पहले, तो फिर वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सकते हैं। और रही बात उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज बहुत सारे हार्मोन की जो बीमारियां होती है हार्मोनल, और जैसे कि बच्चों की हाइट कई बार कम होती है, कई बार उनको बहुत कम उम्र में डायबिटीज हो जाती है, थायराइड हो जाती है, ऐसे इश्यूज भी कई बार बच्चे के अंदर जो सप्रेस्ड इमोशन होते हैं उसके कारण, थोड़ा बहुत तो आप डांट सकते हैं ऑफकोर्स, थोड़ा बहुत तो निकलता है, लेकिन कई बार क्या होता है मदर्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन में बच्चे को किसी भी चीज से मारती है, या कई बार बहुत बुरे तरीके से एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करती है, कई बार ये चीजें होती है, तो फिर देन बच्चे की जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम होने लगती, कम प्रोड्यूस होती है पिट्यूटरी से, और उसके कारण उनकी हाइट में कमी आती है। फिर वो बच्चे बौनेपन के कई बार शिकार होते हैं, या कई बार ऐसा होता है ना कि मदर अपने दिदी स्वभाव के कारण या रूलिंग स्वभाव के कारण, जो मैंने बोल दिया बस वही होना चाहिए, इस तरीके का स्वभाव के कारण कई बार बच्चे की ग्रोथ रुकती है। सो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इस चीज का हर एक माँ को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है जी।
लेकिन उससे कैसे इफेक्ट होता है, मींस मदर का तो नेचर में होता है डांटना बच्चों को तो, और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो थप्पड़ भी लगा देती हैं, बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, तो उसमें वो वाली चीजें कैसे इम्पेक्ट करती है।
देखिए शिवानी जी, आप जो कह रहे थे ना कि हम कभी कभी जो बच्चे को मार देते हैं, कभी कभी हम ये करते हैं कि बच्चे को एक थोड़ा एब्यूसिव लैंग्वेज में डांट दिया या उसे कुछ बुरा भला कह दिया, सो ये जो होता है ना ये कुम्हार के जैसा होता है। जैसे कुम्हार घड़े को बनाते समय कई बार उसको अंदर से थाप देता है, कई बार उसको मारता है, लेकिन वो मार उसके लिए अच्छी होती है, वो घड़ा घड़ा तभी बन पाता है जब वो मार खाता है उस कुम्हार की। ऐसे ही जो आप मारते हैं या आप कभी उसको डांटते हैं वो ऐसा इम्पैक्ट डालता है उस बच्चे के ऊपर। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कई बार जो क्या कैसे मार रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, है ना, हमारी भावना कैसी है। हम देखिए नॉर्मली जब अब बच्चा कुछ गलती करता है और अब जब हम उसको मार रहे हैं तब हमारे अंदर क्या भावना होती है कि हमको बच्चे को सुधारना है। लेकिन जब हम खुद फ्रस्ट्रेट हैं या किसी कारण से अपनी जिद में हैं तो उस समय जब हम डांट रहे हैं तो कैसा इमोशन हमारे अंदर, हाँ आज मेरे को गुस्सा आ रहा है, बस इस गुस्से को बाहर निकालना, वेंटिंग आउट करना है। तो उस समय का गुस्सा वो खतरनाक होता है, और ये गुस्सा अगर कंटिन्यूअसली है आपका या फिर कंटिन्यूअसली आप उसको संभालने के लिए। और देखो एक चीज और होती है शिवानी जी कि कई बार हमारा बच्चे का स्वभाव भी हमको देखने की जरूरत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते जो अंदर से बंद होते, बहुत ज्यादा खुले नहीं होते, और उसको जब हम ऐसा कंटिन्यूअसली करते हैं तो फिर देन उस बच्चे को इस तरीके की ग्रोथ हार्मोन की परेशानी, थायराइड की प्रॉब्लम, आगे चल के ओबेसिटी की प्रॉब्लम, बहुत सारे मेंटल इलनेस आती है जी।
ओके, ये वाली चीज बहुत हेल्प कर सकती है सारी मदर्स को इन चीजों को जानने में, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं।
एक ना छोटा सा उपाय मैं बता देती हूँ जिससे मदर्स को फ्रस्ट्रेशन कम होगा, जिससे वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल पाएंगी और उनको बच्चे के ऊपर ये हाथ उठाना और ये सब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
अरे बहुत ज्यादा जरूरत है सारी मदर्स को ये सही में, क्योंकि होता यूं है कि किसी और का फ्रस्ट्रेशन हमेशा बच्चों पे निकलता है।
बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में हम कोई भी चीज किसी के साथ नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते, ना हस्बैंड से ना और अपने किसी रिलेटिव से, और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये आज हम लोग जानते हैं कि अगर हम अंदर इमोशन को सप्रेस करेंगे तो बाद में डेडली बीमारियां और ये सारी चीजें लेके आएगी। तो उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं बताती हूँ, और इससे आपका देखना आपकी बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एकदम टाइम टेस्टेड चीज बताती हूँ आपको। क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसमें अपना फ्रस्ट्रेशन लिखना है, चाहे तो आप सारांश में लिखो, मतलब शॉर्ट में लिखो, है ना। जैसे मान लो 4 घंटे अगर आपके साथ कुछ चीज हुई, उसको आप कैसे 3 लाइन में लिखोगे, वैसे लिखो, शॉर्ट में लिखो, और इमिडिएटली उसको जला दो, उस पेपर को जला दो ताकि कोई देखे भी नहीं। और जैसे ही आप उसको जलाओगे आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक की वो जो एनर्जी आपके अंदर थी, वो जो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर ब्लॉक हो रही थी, वो पन्ने में आ गई और उसको आपने जला के डिस्ट्रॉय कर दिया। यू नो व्हाट, ये इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है शिवानी जी कि अगर किसी को कैंसर है और उसका अगर हम लेटर्स लिखवाएं फियर का, एंगर का, ग्रीफ का, है ना, उसके गुस्से का, डर का, और ये जो अंदर सप्रेस्ड इमोशन है इसका अगर हम लेटर लिखवाएं 21 दिनों तक के और उसको तुरंत जलवा दें, लिखवाएं जलवाते जाए, तो 21 दिन के बाद उसकी बायोकेमिस्ट्री इतनी चेंज हो जाती है कि जो पहले की रिपोर्ट होती है कैंसर की और जो 21 दिन के बाद की होती है वो बिल्कुल चेंज आती है।
ऐसा भी होता है
ये रिसर्च प्रूफ है।
और जैसे कुछ मदर्स हैं जो कहती हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो वो क्या करें?
नहीं, इतना टाइम तो निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 मिनट तो। अगर आप अपने बच्चे को डांट रहे हैं उतने देर में आप इसको लिख के जला सकते हैं ना, इवन उससे कम समय लगेगा।
राइट
जी शिवानी जी, और एक चीज ये बोलूंगी कि मदर्स के लिए शवासन बहुत अच्छा है। दिन में जब आप नैप लेने के लिए लेते पहले तो आप टाइम निकालो। अगर आपको एकदम बेस्ट पेरेंट बनना है आपको खुद को भी समय देना जरूरी है। कम से कम 5-10 मिनट तो आप अपने लिए निकालो जिसमें आप रिलैक्स हो सको, जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सको
जी।
क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो फिर सब कुछ मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि शिवानी जी हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, उसको हम इनर चाइल्ड बोलते हैं, कि चाहे हम 80 साल के हो जाए, हमारी बॉडी 80 साल की हो जाए, लेकिन हमारा अवचेतन मन 5 साल के बच्चे जैसा ही होता है, वो 5 साल से ज्यादा ग्रो नहीं करता। सो अगर हम अपने आप को टाइम नहीं देते तो वो बच्चा जो है वो अनसुना और अनसमझा सा महसूस करता है, और हम जानते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड से हम दुनिया को देखते हैं। सो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती, फिर हम सोचते हैं कि यार मेरे लाइफ में तंगी क्यों है, मेरा बच्चा क्यों नहीं सुनता, या मुझे क्यों अकेलापन महसूस होता है, सब कुछ तो है, वो इसलिए होता है, और फिर वहां से फ्रस्ट्रेशन कई बार चालू होता है।
जी, ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है आपने, और सही में ये सारी मदर्स को करने की, थोड़ा सा तो उन्हें टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मदर्स हैं वो अगर अपने लिए टाइम निकालेंगी तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा।
हाँ जी बिल्कुल सही है, और इसके साथ जब आप मिनी नैप के लिए जाएं दिन में, तब शवासन करें, तकिया हटाएं, बिल्कुल सीधा लेट जाएं, आपका दिन भर का फ्रस्ट्रेशन लेवल गारंटी से कम होगा, फिर से रिचार्ज हो पाएंगे अपने बच्चे की मस्तियां देखने के लिए, उनके कई बार पागलपन को झेलने के लिए।
बहुत बार पेरेंट्स इस चीज को लेकर भी परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हाथ उठाता है, मीन्स सबको मारता है, छोटे बच्चों को मारता है, बड़ों पे हाथ उठाता है, तो उस चीज को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, और ऐसा बच्चा क्यों करता है, क्या रीजन है?
जी शिवानी जी, आप बहुत सही सवाल कर रही हैं, ये बहुत आज का मतलब एकदम ऐसा है कि क्या बोले, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को पूछते हैं। सो इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए मैं आपको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और सारी चीजों को जोड़ के बताती हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ मेंटल लेवल पे, तो कई बार बच्चे मॉडलिंग करके इस एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, है ना, उन्होंने किसी को देखा ऐसा करते और वो सीखते हैं। दूसरा, उनके अंदर अगर जलन की भावना है, जो कि कई बार पेरेंट्स से उनको मिलती है, अगर कंटिन्यूअसली गर्भ के समय बच्चे ने ये देखा है कि मेरे माँ बाप किसी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कंपटीशन की भावना है, तो ये आती है। और आज देखो सबसे ज्यादा यही है
जी,
हम बच्चे को सिखा भी ये रहे पूरी महाभारत की जड़ भी तो यही थी शिवानी जी।
जी जी,
अगर हम बच्चे को कॉम्पिटिशन नहीं, कंट्रीब्यूशन सिखा दे ना, तो इस चीज का हल निकल जाएगा।
जी एकदम सही।
सो इसकी जरूरत है, और बच्चे इसको मॉडलिंग करके सीखते हैं, और जैसे इनके अंदर ईर्ष्या है ये तो है, साथ ही साथ अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो हमारे बॉडी में अगर पित्त बन रहा है, मतलब फायर एक्स्ट्रा हो रही है ना, मतलब क्या, फायर प्लस वाटर
जी,
तो अगर बढ़ रही है बच्चे के अंदर तो वो ऐसा करेगा। इवन जिद्दी भी कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, तो बच्चे की हमको तकलीफ समझनी पड़ेगी, हमको रूट कॉज देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, या उसको कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, कई बार नाक बंद होती है, इवन एज सिंपल एज दैट, वो बच्चा सामने वाले को समझा नहीं पा रहा है, तो भी ये तकलीफ आती है। अगर पित्त बढ़ गया है तो हो रहा है, और पित्त क्यों नहीं बढ़ेगा, हम आज अपने बच्चे को क्या खिलाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमसे किस चीज की डिमांड करते हैं, मैगी पिज्जा पास्ता, रोटी सब्जी उनको खानी नहीं है। कारण क्या है कि लौकी की सब्जी को हम कई बार खुद मुंह बना के खाते, सो वो बच्चा सीखता है तो उसके बॉडी में एसिड बनता है, तो वो ऐसा करता है। ऐसे बहुत से कारण है जिससे ये सारी चीजें होती है, और कई बार ऐसा होता है कि घर में छोटा बेबी आया, उससे है ना, छोटा बच्चा आया, अब उसके मन में आया कि मेरे से लोग प्यार नहीं कर रहे। नॉर्मली जब माँ गर्भ से होती है सेकेंड टाइम, तो उसको अपने बच्चे को ये समझाना चाहिए, बड़े बच्चे को, कि तेरा छोटा भाई आ रहा है, तेरी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, और तुझे खुश होना चाहिए, तेरे को प्यार करने वाला कोई और आ रहा है। और बाद में भी वो बच्चा आ जाए तब भी हमको पहले बच्चे को भी उतना ध्यान देना चाहिए, जो कि नॉर्मली कई बार कम होता है। सो कई बार क्या होता है, जब बच्चा घर में आता है तो ये जो बड़ा बच्चा होता है ये उसको खिलाने की कोशिश करता है, और ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो डांटते हैं कि भाई देख छोटे बच्चे को लग जाएगी, कई बार उसको दूर करते हैं, तब इस बच्चे के मन में क्या आता है कि अभी तक वो क्या था, सबका लाडला था, लेकिन अब दिमाग में क्या आता है कि अब मेरे को कोई प्यार नहीं करता। कारण कौन है, ये छोटा बच्चा, वो छोटे बच्चे से भी ईर्ष्या करता है, वो बाकी लोगों से भी ईर्ष्या करने लगता है
जी।
सो इस बात को ध्यान रख के ना, पेरेंट्स को उस बच्चे के साथ नरमी से अगर वो पेश आए, उसको सही से समझाए समय पे, तो ये तकलीफ नहीं होगी। और इसका अगर मैं इलाज की बात करूं, तो बच्चे की बॉडी का एसिड लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा एसिड बढ़ाने वाली चीजें नहीं देनी चाहिए, उसको पेट साफ की दवाइयां दिलवानी चाहिए अगर उसका पेट साफ नहीं होता है तो, क्योंकि क्योंकि अगर टॉक्सिक रहेगा ना उसकी बॉडी में, तो माइंड में देन ये सारी चीजें आएगी। और बेस्ट फ्लावर का तो वो हेल्प ले ही सकते हैं शिवानी जी, जैसे इस कंडीशन में। एक आपको उपाय मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए पेरेंट को, मदर को खासकर, जब बच्चा सो रहा हो तब उसके बाजू में बैठ के, और ये गुस्से के लिए और किसी भी इश्यू के लिए काम आएगा। मैंने इस पर्टिकुलर जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ टेक्निक, उसको मैंने हाइपर जो बच्चे होते हैं ना ADHD के, उनके साथ यूज किया है। हाँ, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसके लोग हैं, मरीज है, उनके साथ यूज किया है। प्लस जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना कि सेरेब्रल पालसी है या ऐसा कुछ है, सो उसमें यूज किया है, और सब में रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो अगर माइंड की हमको बच्चे की किसी भी तरीके से अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है, आप सब इसको बेस्ट यूज कर पाएंगे। बहुत आसान सा तरीका है और ट्राई जरूर कीजिएगा। मदर को उस बच्चे के बाजू में बैठ जाना है जब वो रात को सोया हुआ हो, या उसके बाजू में लेट जाए और अपने मन में सोचे कि मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, वो बहुत शांत रहता है, बहुत कूल काम कंपोज्ड बच्चा है मेरा। तो मतलब आप जो चाहते हैं उसको सोचना चालू कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। या फिर जैसे मैंने बोला वैसा, या तो फिर ऐसा बोलो कि हो रहा है। कई बार क्या होता है पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं होता कि इसे कैसे बोलूं, मेरे को मालूम है मेरा बच्चा क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलो कि मेरा बच्चा कूल काम कंपोज्ड होते जा रहा है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये करना चाहिए पेरेंट्स को। एक दो मिनट भी अगर मन में भी सोचे, या धीरे धीरे बुदबुदाए उसके पास में बैठ के, सो ये काम कर जाएगा। मैंने यूट्यूब में भी एक विषय में वीडियो कई बार डाला है कि बच्चे को अगर मानसिक बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो कैसे करें, उसमें भी ये टेक्निक बताई थी। एक और बता देती हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं, एक पेपर ले लीजिए शिवानी जी, या पेरेंट पेपर ले सकते हैं, उसमें ये लिख सकते हैं ऊपर, डिवाइन हीलिंग बिगेन्स नाउ। एनर्जी हीलिंग से भी मैं बता दे रही हूँ, डिवाइन हीलिंग बिगेन्स नाउ। नीचे लिखो, मेरा बच्चा स्वस्थ रहता है, मेरा बच्चा खुश रहता है, वो अच्छे से सारी चीजें करता है, वो कूल काम कंपोज्ड है। नीचे लिखो, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय चाइल्ड, आई लव यू, है ना। लिखो आई लव यू, लिखने के बाद देन उस कागज को आप एक पॉलिथिन में डालो या एक लेमिनेट करा लो उसको, है ना, उसको सील करो, और उसको तकिया की जो खोल होती है, जो हमारा पिलो कवर होता है, उसके अंदर डाल दो। सो क्या होगा, रात के समय जब वो बच्चा उस पिलो के ऊपर सोएगा और उसका अचेतन मन जागृत होगा, उसका सबकॉन्सियस माइंड एक्टिव होगा, क्योंकि रात के समय जब हम सोते हैं हमारा कॉन्सियस माइंड नीचे चले जाते हैं, और हमारा जो अवचेतन मन है या सबकॉन्सियस माइंड है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। सबकॉन्सियस माइंड जो भी इंफॉर्मेशन लेता है वो सब अंदर डाल लेता है, है ना। जो भी सबकॉन्सियस माइंड उस समय एसेस करता है उसको वो मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए पहले के लोग बोलते थे अच्छे रंग लगाओ, अच्छे कलर की बेडशीट बिछाओ, क्योंकि उन सब चीजों का प्रभाव होता है। तो ये करना चाहिए पेरेंट्स को।
एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ आपसे कि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चे हर बार टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं, और एक एक दो दो घंटा उनका कहाँ चला जाता है उन्हें खुद पता नहीं चलता है, और पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो शांति से बैठे हैं तो ठीक है, हम हमारा काम कर सकते, लेकिन एक चीज इसमें आती है कि स्क्रीन टाइम का बच्चों पर क्या इफेक्ट होता है, और क्या ये भी एक रीजन हो सकता है बच्चों का गुस्सा करने का। जैसे अगर हम उन बच्चों का गुस्सा कम करना चाहते हैं तो ऐसी क्या एक्टिविटीज है जिससे उनके गुस्से को मैनेज किया जा सके।
जी बिल्कुल शिवानी जी, बच्चे अगर स्क्रीन में लगे रहेंगे तो उनका गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि कई बार हमारे ब्रेन में फंक्शनिंग जो है वो गड़बड़ होती है। हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग कई बार एकदम अलग हो जाती है, डिसफंक्शनल हो जाता है हमारा ब्रेन जब हम लगातार कंटिन्यूअसली अगर स्क्रीन में हम लगे हुए हैं तो, है ना। हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, और हमारी स्लीप साइकिल का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे हार्मोन्स पे होता है, हमारे जो हमारे अंदर की बायोलॉजी है उस पर होता है। सो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि स्क्रीन टाइमिंग कैसे कम कराएं, कि सबसे पहले तो मम्मियों को मोबाइल छोड़ना पड़ेगा
जी।
हम खुद रात के 12 बजे तक अगर लोगों का लास्ट सीन देखेंगे कि व्हाट्सएप चला के चलो देखते हैं ये ऑनलाइन है या नहीं है, सो बच्चे तो वो सीखेंगे, फिर उनका डेफिनेटली इंक्लिनेशन उधर होगा। सो मॉम को ये चीज करनी चाहिए सबसे पहले तो, और जो भी मॉम्स हैं उनको सबसे पहले पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा ये देखेगा, आप देखो सुधा मूर्ति जो है वो अपने बच्चों को जब पालती है, जो पेरेंटिंग गाइड वो देती है, टिप्स वो देती है, उसमें वो यही कहती कि सबसे पहले तो मदर्स को बैठ के बच्चों के सामने पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सो आज नहीं तो कल बच्चे का भी इंक्लिनेशन पुस्तक पढ़ने में आएगा, तो जाहिर सी बात है वो पुस्तक पढ़ेगा तो स्क्रीन उसकी दूर रहेगी, है ना।
जी
दूसरा, उनको खुद भी अच्छी चीजों में एंगेज होना चाहिए, उनको खुद कुछ अच्छी हॉबीज में जाना चाहिए, और अगर वो अच्छी हॉबीज में नहीं जा सकती, अच्छी चीजें सीखने नहीं जा पा रही है बाहर, तो बच्चे को एंगेज करना चाहिए
जी
ताकि स्क्रीन टाइमिंग कम हो। और कुछ तो समय बच्चों को माँ बाप को खुद भी देना चाहिए, खुद भी मोबाइल को दूर करें, खुद भी खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखें, लैपटॉप नहीं चलाएं, टीवी नहीं चलाएं, बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। सो ये एक सॉल्यूशन होगा। प्लस इसके साथ साथ माँ बाप को एक चीज और ये करनी चाहिए कि जो वो पहले गेम खेला करते थे, हमने गिल्ली डंडा खेला है, क्रिकेट खेला है, हमने अष्ट चंगा खेली है, हमने कई बार वो पंच छुपाई खेली है, जो 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 खेल हमने खेले हैं, बहुत सारे ऐसे गेम भी जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, जो आजकल मोबाइल पे आ गए हैं, वो सब हमने पहले खुद से खेले हैं, है ना, मोबाइल पे नहीं खेले, सामने से खेले, घर के लोगों के साथ बैठ के खेले। तो अब माँ बाप को भी ये करना होगा कि बच्चे को चेस ला के दो, कैरम ला के दो, बिजनेस गेम ला के दो, साथ में खेलो। इससे दो फायदे होंगे, पहले तो मदर और फादर का स्ट्रेस लेवल कम होगा जो वो दिन भर बाहर से जाके लेके आते हैं, दूसरा बच्चे का स्ट्रेस कम होगा, उसको कंपनी मिलेगी, वो अकेला फील नहीं करेगा। आज सबसे बड़ी जो डिस्ट्रेक्शन का कारण है वो क्यों है, बच्चे क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों इतने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको घर में कोई मिलता नहीं जिससे वो बात करे, अपने दिल की चीजें शेयर करे, जो उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताए।
जी
सो ये एक फायदा होगा, स्क्रीन टाइम कम होगी, प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपको अलग से, अच्छा अभी चलो चेस तो छोड़ो, क्रिकेट भी खेलने जाओगे ना साथ में आप, चेस तो खेलोगे, आउटडोर भी खेलने जाओगे, तो आउटडोर जाओगे तो फिजिकली आप भी फिट होगे, आपके डॉक्टर के खर्चे बचेंगे, बच्चे का तो बचेगा ही बचेगा, आपके डॉक्टर का खर्चा बचेगा, आप एंटी एजिंग जो आप ढूंढते हो चीजें वो ट्रीटमेंट कम करवानी पड़ेगी। तो ऐसे ही एक पंथ दो काज होगा और ऐसे स्क्रीन टाइमिंग छूटेगी। सो पेरेंट्स को करके दिखाना पड़ेगा, बिना स्क्रीन के रह के दिखाना होगा, तब बच्चे सीखेंगे। हम एक जगह पढ़ रहे थे कि जैसे अगर बच्चे को आदत है कि वो ब्रश नहीं करता, है ना, ये बैड हैबिट उसने लगा ली है, तब ये बैड हैबिट अगर छुटवानी है तो क्या करो, उस बच्चे को बोलो ठीक है बेटा नहीं खाओ, पता है हमारे गाँव में एक बच्चा था, वो ना ब्रश नहीं करता था, फिर उसके दांत आए, लेकिन दांत आने के बाद भी कोई वो कुछ ज्यादा दिन रहे नहीं, दांत पीले हुए, फिर काले हुए, फिर पूरे झड़ गए, फिर बाद में ना वो चना भी नहीं चबा पाता था, और लोग भी उसको बोलते थे कि भाई ये तो भोबला है, और पूरे सबके सब, उसकी बाद में शादी भी नहीं हुई, बाद में उसको किसी ने प्यार भी नहीं किया, बाद में उसको देख के लोग हंसते ही थे। तो धीरे से ये बात जो है ना उस बच्चे के माइंड में प्लांट हो जाएगी कि दांत तो साफ करने पड़ेंगे, सिर्फ और पेन बस मत दिखाओ, प्लेजर भी दिखाओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेन से मोटिवेट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो रिवार्ड से। कई बार आप बोल सकते हो कि बेटा आज तो अगर स्क्रीन नहीं देखेगा तो तुझे मैं ये चीज ला के दूंगी,
लेकिन उसमें भी फिर अगर उसकी आदत पड़ जाए तो
कि रिवार्ड हर बार की,
यस
नहीं नहीं वो आपको उसको इस तरीके से ट्रेंड करना पड़ेगा, हमेशा मत दीजिए, कई बार आप उसके फायदे बताइए, कई बार उसको कोई एक्टिविटी में दीजिए, कई बार आप उसको सिर्फ हक करिए, वेरी गुड बेटा आज तूने नहीं किया, तू तो स्मार्ट बॉय, तू तो स्ट्रांग बॉय है, जहां दुनिया के बाकी लोग बिना स्क्रीन के नहीं रह सकते तू रह सकता है, उसकी आइडेंटिटी बिल्ड कीजिए। उनको रिवॉर्ड्स ना ऐसे उनको चॉकलेट के फॉर्म में या फिर और कोई चीज के फॉर्म में नहीं देना है, कई बार हमको उनको प्लेजर से कनेक्ट करना है, लेकिन प्लेजर कैसा होगा, जैसे जो काम हम उनसे करवा रहे हैं उस चीज से प्लेजर कनेक्ट कराएं। जैसे अगर हम उनको स्कूल भेजना चाह रहे हैं तो स्कूल के साथ अच्छा मेमोरी, अच्छी चीजें, अच्छे एसोसिएशंस बना के दें कि वाओ स्कूल जा रहे हो आप, स्कूल में तो आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, इस तरीके से, सो देन वो चीजें कम होगी, है ना, तो फिर उतना रिवॉर्ड नहीं देना पड़ेगा और बिना रिवॉर्ड के भी काम होगा। जी
ओके हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जैसे आपने रिवॉर्ड की बात की, उनकी आदत ना पड़ जाए, एक्सेस चॉकलेट खाना भी बहुत ज्यादा गलत हो सकता है।
जी बिल्कुल।
एक क्वेश्चन और आता है कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं उनकी चीजों से, कोई भी चीज करेंगे, कोई भी गेम खेलेंगे तो उससे वो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और उस टाइम पे फिर वो अकेला फील करने लग जाते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा प्लेजर मिले, खुशी मिले, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हैं?
आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है और सही बात है, मैं इससे एकदम इत्तेफाक रखती हूँ कि बच्चे बहुत जल्दी आज के बोर होते हैं। कारण इसका ये है कि बच्चे का, आज के जो बच्चे ना उनका मन बहुत ज्यादा चंचल है, चंचल इसलिए क्योंकि वात रोगी है, हमारी बॉडी में तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ, अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें। आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है और जैसा हम आज जी रहे हैं ना, हमारे बॉडी में और बच्चों के बॉडी में वात बहुत ज्यादा बन रहा है। एयर और स्पेस मीन्स वात, वात होता है ना, वात पित्त कफ में से वात अगर हम देखें तो वो एयर और स्पेस एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो आज के बच्चों में ये सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो अस्थिर होते हैं। और वात का नेचर होता है ना, एयर का नेचर कैसा होता है, एक जगह नहीं टिकती, उसको घूमना पसंद होता है, तो ऐसे बच्चों के साथ है इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, उनके वात को कंट्रोल करने की एक्टिविटी करवानी चाहिए। वात को कैसे कंट्रोल कराओगे, आप ओम चैंटिंग उस बच्चे से करवाओ, कुछ नहीं तो 2-5 मिनट से मेडिटेशन में बैठलाओ, उसको खाने में घी दो, नट्स दो, नट्स को ऐसे हर बार भिगा के देने की जरूरत नहीं है, वॉलनट दे दीजिए, आलमंड दे दीजिए, कैश्यू दे दीजिए, ये सबसे क्या होगा, उसका वात कंट्रोल में आएगा। घी खासकर, आजकल हम क्या करते हैं, बच्चा मोटा नहीं हो जाए इसलिए उसको घी नहीं देते, जबकि उसकी हड्डियों के लिए, उसके माइंड में वात ज्यादा ना बढ़े इसके लिए इसकी जरूरत है। हम कई बार बच्चे के सिर में तेल मालिश नहीं करते, उसकी जरूरत है। अगर ये करेंगे तो बच्चे का मन स्थिर होगा, तो फिर वो इतने जल्दी बोर नहीं होगा, है ना। और जो आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, अल्टीमेटली आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो ना, कि कैसे बढ़ाएं, तो वह ऐसे होगा, उसका फोकस कंसंट्रेशन ये इससे बढ़ेगा।
जी एकदम सही कहा, पेरेंट्स को भी इन चीजों को समझना चाहिए और अपने आप को, क्योंकि एक होता है सबसे पहला जो कदम होता है वो अपना खुद को सुधारने का होता है। अगर मदर सबसे ज्यादा उनके करीब रहती हैं तो मदर को ये चीजें सीखनी चाहिए, हर बार उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अगर कोई चीज उन्होंने गलत बोल दी है बच्चों को, या कोई ऐसा वर्ड बोल दिया है कि वो बच्चे को हर्ट हो गया है, या फिर उनमें बाद में पता चला कि हमें ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, तो उसे भी वो कैसे सॉल्व कर सकती है, उसे भी वो कैसे सुधार सकती है, तो उन चीजों को सब ये छोटी छोटी चीजें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि वेद सर ने कहा था, हर चीज का क्लास होता है, स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो लेकिन उसका कोई क्लास क्यों नहीं होता, राइट?
सही बात है। हम डॉक्टरी के लिए मेडिकल की पढ़ाई करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज पे जाते हैं, लेकिन पेरेंटिंग की कोई क्लास नहीं होती।
यस, जो एक सबसे बड़ा रोल है बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, उनके माइंड को डेवलप करने के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आप पहले आपका बच्चों का माइंड ऐसा बना दोगे कि उसको बाद में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो वो पेरेंट्स के लिए उनकी मेहनत तो होती है वो आधी हो जाती है जैसे बच्चा बड़ा होता है।
थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया मुझे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट शूट करके। एंड आई नो कि जब आपने हमारे लिए एफर्ट किया है, और जो भी यहाँ तक सुनेगा, मुझे पूरा भरोसा है उसकी लाइफ में चेंज जरूर होगा, वो कुछ नया सीख के जाएगा और वो इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, मैं भरोसे से कह सकती हूँ। जी
थैंक यू सो मच हमारे साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और हमारे पॉडकास्ट पे 4 चांद लगाने के लिए।
थैंक्स टू यू शिवानी जी फॉर इनवाइटिंग मी, आपको मैं बोलूंगी, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपने बुलाया तो मैं ये सारी चीजें, आपने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे तो मैं इतने अच्छे जवाब दे पाई,
ना टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और शेयर करना ना भूलें क्योंकि शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। थैंक यू।